الجن. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان و رحم فرمانے والا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ دیجئے کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا کہ اس نے عجیب قرآن سنا ہے. یہاں روک کے آپ کو بتاؤں کہ سورۃ الاحقاف پہ ہم یہ سٹوری پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آ رہے تھے اور آپ کے ساتھ بہت مس بہیو ہوا, تو وہاں آپ کو جنوں کی ایک جماعت نے سنا. وہ شخص جو آپ سے سن کے گیا, اب یہاں پوری سورت جن کو ایک ہی کنٹینیوسلی سنیں گے تو انشاءاللہ دیکھیں گے کہ صرف ایک دفعہ اس نے سنا اور جا کے دوسروں کو سنانے والا ہو گیا. ہم کہتے ہیں ہم اس قابل ہی نہیں ہوئے کہ دوسروں تک بات آگے کریں. اب دیکھتے ہیں کہ اس جن نے کیا سنا اور کیا کہا. کہہ رہے کہ میں نے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ دیں کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے. ہم اس پر ایمان لا چکے, اب ہم ہرگز کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہ بنائیں گے, اور بے شک ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے. نہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا نہ بیٹا. اور یہ کہ ہم میں کا بے وقوف اللہ کے بارے میں خلاف حق باتیں کہا کرتا تھا, اور ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ ناممکن ہے کہ انسان اور جنات اللہ پر جھوٹی باتیں لگائیں. بات یہ ہے کہ چند انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے, جس سے جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے, اور انسانوں نے بھی تم جنوں کی طرح گمان کر لیا تھا کہ اللہ کسی کو نہ بھیجے گا یا کسی کو دوبارہ زندہ نہ کرے گا. اور ہم نے آسمان کو ٹٹول کر دیکھا تو اسے سخت چوکی داروں اور سخت شولوں سے پر پایا. اس سے پہلے ہم باتیں سننے کے لیے آسمان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے, اب جو بھی کان لگاتا ہے وہ ایک شولے کو اپنی تاک میں پاتا ہے. ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے, ان کے رب کا ارادہ ان کے ساتھ بھلائی کا ہے. اور یہ کہ بے شک بعض تو ہم میں نیکوگار ہیں اور بعض اس کے برعکس بھی ہیں, ہم مختلف طریقوں سے بٹے ہوئے ہیں, اور ہم نے سمجھ لیا کہ ہم اللہ کو زمین میں ہرگز ہرا نہیں سکتے اور نہ ہم بھاگ کر اس کو ہرا سکتے ہیں. ہم تو ہدایت کی بات سنتے ہی اس پر ایمان لا چکے. اللہ کرے ہم بھی ایسے ہی ہوں. اور جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے نہ کسی نقصان کا اندیشہ ہے نہ ظلم و ستم کا. ہاں ہم میں بعض تو مسلمان ہیں اور بعض بے انصاف ہیں, بس جو فرما بردار ہو گئے تو انہوں نے راہ راست کا قصد کیا. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. اور جو ظالم ہیں وہ جہنم کا ایندھن بن گئے. اور اے نبی یہ بھی کہہ دیجئے, اگر لوگ راہ راست پر سیدھے رہتے تو یقیناً ہم انہیں بہت وافر پانی پلاتے تاکہ ہم اس میں ان کو آزما لیں. اور جو شخص اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ پھیر لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اور یہ کہ مسجدیں صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہیں, بس اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. اور جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ بھیڑ کی بھیڑ بن کر اس پر پل پڑے. آپ کہہ دیجئے میں تو صرف اپنے رب کو ہی پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. کہہ دیجئے کہ مجھے تمہارے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں. کہہ دیجئے کہ مجھے ہرگز کوئی اللہ سے بچا نہیں سکتا, میں ہرگز اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں پا سکتا. البتہ میرا کام اللہ کی بات اور اس کے پیغامات لوگوں کو پہنچا دینا ہے. اور اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے. ان کی نانگ کھلے گی یہاں تک کسے دیکھ لیں جس کا ان کو وعدہ دیا جاتا ہے. پسند قریب جان لیں گے کہ کس کا مددگار کمزور اور کس کی جماعت کم ہے. کہہ دیجئے کہ مجھے معلوم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے دور کی مدت مقرر کرے گا. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس پیغمبر کے جسے وہ پسند کر لے, لیکن اس کے بھی آگے پیچھے پہرے دار مقرر کر دیتا ہے تاکہ ان کے اپنے رب کے پیغام پہنچا دینے کا علم ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے ان کے آس پاس کی تمام چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے اور ہر چیز کی گنتی کا شمار کر رکھا ہے. یہ تھی آیت 1 سے 28, 1 to 28. ان کا عنوان ہے جو جن سے ڈرے گا جن اس کو ڈرائے گا. پوری صورت کے اندر جو جنات کی مختلف کیفیات تھیں, اگر اس کو اور قرآن اور سنت میں جو باتیں ہیں اس کو سامنے رکھ کے آپ کے ساتھ بتاؤں کہ جنات جو ہیں انسانوں سے پہلے دنیا میں موجود تھے, एक मेच्योर जिन जो होता है उसके अंदर 3 से 4 साल के बच्चे के बराबर अकल होती है, यानी जिस्मानी तौर पे बहुत बड़े हैं, वॉक बहुत कर सकते हैं, दीवारों में से गुजर सकते हैं, लकड़ी में से गुजर सकते हैं, शीशे में से गुजर सकते हैं, लेकिन अकल बहुत थोड़ी होती है, उम्रें लंबी होती है इनकी। इनका मामला ये कि ये इंसानों से डरते हैं। लेकिन पहले दौर में क्या होता था कि जब लोग किसी जंगल से गुजरते थे ना, तो वहाँ जिन्नों का बसेरा होता है, तो लोग वहाँ जाके ऊंची आवाज से पुकार लगाते थे, जो शिर की आवाज होती थी कि इस जंगल के जिन बादशाह की पनाह में आता हूँ, यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम कहने की बजाय जिन्नों की पनाह मांगते थे। ये बात सुन के जिन कहते, अरे हम तो इनसे डर रहे थे, तो ये तो हमसे डरता है। बस इस बात पे फिर वो उस शख्स को डराने लगते थे। और याद रखिए कि जिन और इंसान का बच्चा, आप इससे जितना डरेंगे ना, ये आपको उतना डराएगा, और आप इनके ऊपर अपना रोब डाल लें, ये आपसे दबने लगेंगे। बाद अपने बच्चों को भी इसी तरह पालते हैं कि उनसे डरने लगते हैं। तो लिहाजा जिन जो है उनसे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कभी आपको कहीं महसूस भी हो, होते हैं, आपको नहीं पता यहाँ कितने हो, अच्छी बात है, इनमें नेक भी होते हैं बद भी होते हैं। जैसे इंसान अच्छे काम करते हैं, ये भी अच्छे करते हैं, बुरे भी करते हैं, वो भी करते हैं। इनकी शरीयत थोड़ी सी हमसे फर्क है। जैसे हमारी शरीयत के अंदर हड्डियां और गोबर और गंदगी, ये हराम है, लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम में से कोई हड्डी के साथ इस्तंजा ना करे, ये तुम्हारे जिन भाइयों की खुराक है, इनको तकलीफ नहीं देनी चाहिए। ऐसी कहानियां सुनी मैंने बहुत करीब से, हमारे घर में खिदमत करने के लिए होते थे देहात से आए हुए, तो उनके पास जिन था, और वो बताते थे कि बचपन से ही हमारे घर में होता, उसका नाम भी उन्होंने कुछ रखा हुआ था, और वो बताते थे कि मर्दान से कराची तक वो सिर्फ 15 मिनट में आ जाता है। जब कभी वो खान बाबा जाते थे छुट्टी पे अपने गाँव में, तो कहते थे मैं वहां से जिन को कहता हूँ कि जाओ देख के आओ हाजी साहब क्या कर रहा है, तो कहते हैं वो 15 मिनट आने और जाने के आके बताता था कि हाजी साहब इस वक्त अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा है। इससे आपने देखा कि इसमें हमारे लिए सीखने की बात क्या है कि जिन ने एक बार अल्लाह के नबी से अल्लाह का पैगाम सुना और उसने जाके अपनी कौम को सिखाना शुरू कर दिया। ना उसने ग्रामर याद की, ना उसने तजवीद सीखी, ना उसने 10 उलूम सीखे जो आज हम सोचते हैं कि दूसरों को बात बताने के लिए, और हम इस शहर के शिकार होते हैं, बल्कि आप कह लें कि इस कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं कि हम नहीं दीन की खिदमत कर सकते, तो ये भी इससे कॉम्प्लेक्स हमारा दूर होता है। अगली 2 सूरतें इंशाल्लाह ताला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बड़ा खूबसूरत एंगल हमें सिखाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरत मुज़म्मिल। या अय्युहल मुज़म्मिल, कुमिल लैला इल्ला क़लीला, निस्फ़हु अव इन्क़ुस मिन्हु क़लीला। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। ए कपड़े में लिपटने वाले, रात के वक्त नमाज में खड़े हो जाओ मगर कम, आधी रात या इससे भी कुछ कम कर लो या इस पर बढ़ा दो, और कुरान को ठहर ठहर कर साफ पढ़ा करो। इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला, यकीनन हम तुझ पर बहुत भारी बात अन करीब नाजिल करेंगे। बेशक रात का उठना दिल जमाई के लिए इंतहाई मुनासिब है और बात को बहुत दुरुस्त करने वाला है। यकीनन तुझे दिन में बहुत शुगल रहता है। वस्कुर इस्मा रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला, तू अपने रब के नाम का जिक्र कर और तमाम मखलूक से कटकर इसकी तरफ मुतवज्जे हो जा। किस रब की तरफ? रब्बुल मशरिकी वल मगरिब, मशरिक व मगरिब का परवरदिगार, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, तू इसी को अपना कारसास बना ले। वस्बिर अला मा यकूलून, और जो कुछ वो कहें तू सहता रह, और वजादारी के साथ इनसे अलग थलग रह, और मुझे और इन छुटलाने वाले असुदा हाल लोगों को छोड़ दे, और इन्हें जरा सी मोहलत दे। इन्ना लदैना अनकालम व जहीमा, यकीनन हमारे यहाँ सख्त बेड़ियाँ और सुलगती हुई जहन्नुम है। व तामन ज़ा ग़ुस्सतिन व अज़ाबन अलीमा, और हलक में अटकने वाला खाना है और दर्द देने वाला अजाब है। क्या होगा उस दिन? यौम तरजुफुल अर्द वल जिबाल, जिस दिन जमीन और पहाड़ थर थरा जाएंगे और पहाड़ मिसल भुरभुरी रेत के टीलों के हो जाएंगे। ये थी आयत नंबर 1 से 14, 1 to 14। इसका अनवान है, रात का जागना नफ्स को तोड़ता है, और आप इसकी इस वक्त शायद मशक कर रहे होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावती ज़िंदगी में, जब मक्का का दौर था, बहुत ज़्यादा आपके लिए आजमाइश का दौर था। एक तरफ तो आपके ऊपर अल्लाह के कलाम वही की सूरत में नाजिल हो रहा था, और जिसके दिल में ये कलाम नाजिल हो जाता है, फिर उसको चैन नहीं आता जब तक वो दूसरों को न बता दे। लेकिन जब दूसरों को बताने के लिए जाते थे तो उधर से पत्थर पड़ते थे। मक्का की ज़िंदगी का बिल्कुल आगाज़ था। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला अपने नबी को तसल्लियाँ देता है कि उठिए, सोने के दिन गए, अब आपको जागना पड़ेगा। इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला, इस आयत में कौलन सकील से मुराद है इंजार, दूसरों को डराना। हकीकत ये कि अपनी इबादत करना बहुत आसान है। आप किसी भी वक्त कुछ भी कर लें, एक वक्त आता है कि इबादत आदत बन जाती है, फिर मुश्किल नहीं लगती। लेकिन जो चीज़ मुश्किल है ना, वो इंतज़ार है। इंतज़ार ऐसी है कि जैसे भिड़ों के छज्जे में हाथ डालना। वो लोग जो अपनी मज़े की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, वो आपको शहद की मक्खियों की तरह चिपकने लगते हैं कि आप होते कौन है हमारे रंग में भंग डालने वाले। ऐसे वक्त में फिर अल्लाह ताला एक तरीक़ेकार अपने नबी को बताते हैं, और वो क्या है कि रात की कुछ घड़ियों में अल्लाह से मदद मांग लिया करो, और दूसरों से कट के एक रब के बन जाओ। तबत्तुल, हमने तारुफी लेक्चर में इस पे बात की थी। रमज़ान भी हमें तबत्तुल सिखाता है। रात की इबादत अल्लाह ताला के साथ कुर्ब दिलाती है, और बात बड़ी सीधी निकलती है। हम में से कोई बहुत स्ट्रगलिंग फेज में है ना अपने गुनाहों को छोड़ने के लिए, कोई चीज़ जो आपको अच्छी लगती है, मसलन सॉन्ग्स, म्यूज़िक, छुटता नहीं है। आप हमेशा अपने नफ्स के आगे शर्मिंदा हो जाते हैं, वादे कर करके तोड़ते हैं। इसका इलाज है इसमें, और वो क्या कि इन्ना नाशियतल लैल, रात का जागना। ये नफ्स को कुचल के रख देता है। देखिए, हमारा दीन जो है ना, ये जब्ते नफ्स का दीन है। इसके अलावा जो आज का कल्चर है, वो क्या कि जो नफ्स चाहे वो करो, जो चाहो करो। इस्लाम कहता है कि जो तुम चाहो वो नहीं करो, जो अल्लाह तुमसे चाहे वो करो। तो अगर हम अल्लाह के लिए थोड़ा थोड़ा वक्त निकाल के अपने आप को इबादत में जमाने वाले बन जाएंगे, इंशाअल्लाह ताला मुश्किल कम होगी। एक और मुश्किल पड़ती है इस रास्ते में, और वो क्या, लोगों की तरफ से बहुत बातें सुननी पड़ती हैं, तो उसका इलाज क्या है कि वसबिर अला मा यकूलून, सब्र करो। और सब्र उसको आता है जो रात की घड़ियों में अल्लाह को अपने दुख दर्द सुना लेता है। फिर कहा, इन्ना अरसलना इलैकुम रसूला, बेशक हमने तुम्हारी तरफ भी तुम पर गवाही देने वाला रसूल भेज दिया, जैसे कि हमने फिरौन के पास रसूल भेजा था। तो फिरौन ने इस रसूल की नाफरमानी की, तो हमने इसको सख्त वबाल में पकड़ लिया। अगर तुम काफिर रहे तो उस दिन कैसे पना पाओगे? कौन सा दिन? यौम यजलुल विल्दान शीबा, जो दिन बच्चों को बूढ़ा कर देगा। अस्समाउ मुनफतिरुम भी, जिस दिन आसमान फट जाएगा, और अल्लाह का ये वादा होकर ही रहने वाला है। इन्ना हाजिही तस्किरा, बेशक ये नसीहत है, बस जो चाहे अपने रब की तरफ राह इख्तियार करे। ये थी आयत नंबर 15 से 19, 15 to 19। इसका उनवान है पैगंबर का आना, हक और बातिल के दरमियान फैसला। किसी दौर में भी जब कोई दीन की बात या पैगंबर या रसूल आता है, तो वो लोगों को उनके हक और बातिल के बीच में जो एक बारीक सी दीवार होती है, उस दीवार को ख़त्म करने के लिए आता है, ताकि लोगों को पता चल जाए कि हम नफ्स की जो ख्वाहिशात के मुताबिक जी रहे थे, वो क्या वाकई हमें अल्लाह की रज़ा की तरफ लेके जाने वाली थी, या नाफरमानियों की तरफ लेके जाने ली थी। और अल्लाह का ये वादा भी है कि जब तक लोगों के ऊपर हुज्जत तमाम ना कर दी जाए ना, तब तक अल्लाह ताला की पकड़ नहीं होती। तो लिहाजा कभी भी ज़िंदगी में अल्लाह का कलाम खुल जाए, तो हमें अपने आप से एक वादा करना है। कल तक की जो ज़िंदगी थी ना, वो लाइल्मी की थी। इल्म आने के बाद जो ज़िंदगी होगी, वो दलील की ज़िंदगी होनी चाहिए। फिर अगर ज़िंदगी में तब्दीली नहीं आती, तो अल्लाह ताला एक इंतकाम ज़रूर लेता है ऐसे बंदे से, और वो क्या है कि तौफीक छीन लेता है। और अल्लाह ना करे कि हम में से किसी से तौफीक छीने। या आपने क़्यामत का मंज़र देखा कि बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, इतना खौफ होगा कि वो बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, या वो दिन इतना तवील होगा कि जिस दिन लोग इंतज़ार कर करके बूढ़े हो जाएंगे। ऐसे दिन की तैयारी के लिए क्या करना है, इसका तذकरा अगली आयतों में हमें मिलेगा। आयत नंबर 20, इन्ना रब्बक यालमु अन्नक तकूम, आपका रब बखूबी जानता है कि आप और आपके साथ के लोगों की एक जमात करीब दो तिहाई रात के और आधी रात के और एक तिहाई रात के तहज्जुद पढ़ती है, और रात दिन का पूरा अंदाजा अल्लाह ताला को है। वो खूब जानता है कि तुम इसे हरगिज़ न निभा सकोगे, बस इसने तुम पर मेहरबानी की, लिहाजा जितना कुरान पढ़ना तुम्हारे लिए आसान हो उतना ही पढ़ो। वो जानता है कि तुम में से बास बीमार भी होंगे और बास दूसरे जमीन में चल फिर कर अल्लाह का फजल यानी रोजी भी तलाश करेंगे और कुछ लोग अल्लाह की राह में जिहाद भी करेंगे। बस तुम आसानी जितना कुरान पढ़ सको पढ़ो और नमाज की पाबंदी रखो और जकात देते रहो और अल्लाह ताला को अच्छा कर्ज दो, और जो नेकी तुम अपने लिए आगे भेजोगे इसे अल्लाह के यहाँ बेहतर से बेहतर और सवाब में बहुत ज्यादा पाओगे। अल्लाह ताला से माफी मांगते रहो, यकीनन अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। ये थी आयत नंबर 20। एक ही आयत है और तवील आयत है। कुरान पाक की कुछ आयात जो तवील हैं उन्हीं के अंदर इस आयत का भी शुमार होता है। इनका टॉपिक है फराइज इंसान की वुसअत के मुताबिक। अल्लाह ताला ने दीन की जो बातें हम पे फ़र्ज़ की हैं ना, वो एक औसत दर्जे के मुसलमान को सामने रखते हुए रखी हैं। इंसान तीन किस्म के होते हैं, एक्स्ट्रॉर्डनरी जीनियस, स्ट्रेंथफुल ईमान और जिस्मानी ताकत के नाते से, कुछ होते हैं मीडियम और कुछ होते हैं बिल्कुल निचले। जो फराइज है ना वो मीडियम दर्जे के लिए होते हैं। जो लोग नीचे होते हैं ना उनको थोड़े से अपने ईमान को बढ़ाने की ज़रूरत होती है। वही चीज़ जो आज उनको मुश्किल लग रही थी वो कल आसान लगेगी अल्लाह के हुक्म से। जो लोग बहुत आला दर्जे पे होते हैं उनको क्या हुक्म है कि जब दूसरों के साथ तुम इबादत कर रहे हो, मसलन कि एक शख्स है इमाम है और नमाज पढ़ा रहा है, तो आपने फरमाया कि मुख्तसिर नमाज पढ़ाए। इसी तरह से कोई भी काम जो इंसान ज़ाती तौर पे नफिल के तौर पे करता है, जैसे इस वक्त आप लोग बैठे हुए हैं, तो इसके अंदर इंसान की चॉइस है, लेकिन फ़राइज़ के अंदर कमी बेशी नहीं की जा सकती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी पूरी रात जागते थे। अल्लाह ताला ने कहा इतना नहीं, कुछ हिस्सा सो जाओ। आज के दौर में जो लोग शबीने के नाम पे पूरी रात कुरान पाक का ख़त्म और उस तरह की बात करते हैं, इस्लाम में ये चीज़ पहले नहीं मिलती थी। कुछ सालों से इसका रिवाज हो गया। तो बहरहाल अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि हमें वो काम करने की तौफीक दे जिसको हम कर सकें। मेरा ख्याल है कि अब तो हमें आदत हो जानी चाहिए रातों को जागने की। सूरत मुद्दसिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल मुद्दसिर कुम फअन्ज़िर व रब्बक फकब्बिर व सियाबक फतहिर व रुज्ज़ फहजुर वला तमनुन तस्तकसिर व लिरब्बिक फसबिर। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और रहम वाला है। ए कपड़ा ओढ़ने वाले, खड़ा हो जा और आगाह कर दे और अपने रब ही की बड़ाइयां बयान कर, अपने कपड़ों को पाक रखा कर, न बाकी को छोड़ दे और एहसान करके ज्यादा लेने की ख्वाहिश न कर और अपने रब की राह में सब्र कर। फैजा नुकीरा फिन्नाकूर। बस जब सूर में फूक मार दी जाएगी वो दिन तो बहुत सख्त होगा जो काफिरों पर आसान न होगा। मुझे और इसे छोड़ दे जिसे मैंने अकेला पैदा किया और इसे बहुत सा माल दे रखा है और हाजिर बाश फर्जंद भी, और मैंने इसे बहुत कुछ कुशादगी दे रखी है फिर भी इसकी चाहत है कि मैं इसे और ज्यादा दूं। कल्ला, हरगिज़ नहीं, वो हमारी आयतों का मुखालिफ है। अनकरीब मैं इसे एक सख्त चढ़ाई चढ़ाऊंगा। इसने गौर करके तजवीज़ की, इसे हलाकत हो, कैसी तजवीज़ सोची, वो फिर गारत हो, किस तरह अंदाज़ा किया, और इसने फिर देखा, फिर तेवरी चढ़ाई और मुंह बनाया, फिर पीछे हट गया और गरूर किया और कहने लगा ये तो सिर्फ जादू है जो नकल किया जाता है। इन हाजा इल्ला कौलुल बशर, सिवाय इंसानी कलाम के कुछ भी नहीं है। सौसली ही सकर, मैं अन करीब इसे दोजख में डालूंगा और तुझे क्या खबर के दोजख क्या चीज है। ला तुबकी वला तजर, ना वो बाकी रखती है और ना छोड़ती है। लवा खतुल लिल बशर, खाल को झुलसा देती है। अलैहा तिस अता अशर, और इसमें 19 फरिश्ते मुकर्रर हैं। हमने दोजख के दारोगे सिर्फ फरिश्ते रखे और हमने इनकी तादाद सिर्फ काफरों की आजमाइश के लिए मुकर्रर की है ताकि अहले किताब यकीन कर ले और अहले ईमान के ईमान में इजाफा हो जाए और अहले किताब और अहले ईमान शक न करें और जिनके दिलों में बीमारी है वो और काफिर कहें कि इस बयान से अल्लाह की क्या मुराद है। अल्लाह ताला जिसे चाहता है हिदायत देता है, जिसे चाहता है गुमराह करता है और जिसे चाहता है हिदायत देता है। तेरे रब के लश्करों को इसके सिवा कोई नहीं जानता। ये तो कुल बनी आदम के लिए सरसर पिंदो नसीहत है। ये थी आयत नंबर 1 से 31, 1 से 31। इनका उन्वान है क्यामत के आते ही। सारी सूरत हाल बदल जाएगी। हकीकत भी यही है। आज जो चीज़ इंसान को छोटी लगती है कल बड़ी लगेगी, आज जो मुश्किल लगती है कल वो आसान लगेगी, आज जिन मुश्किलात को हम मुश्किल समझते हैं कल कयामत के मनाजिर को देखकर इंसान हंसेगा, मैं इस चीज़ पे परेशान होता था। और ऐसा इंसान फिर दुनिया में अगर अपने आप को तफक्कुरात में डालकर अपनी आखरत से बेनियाज हुआ तो उसको इंतहाई अफसोस होगा कि मैंने इतने बड़े गम को छोड़कर एक छोटा गम क्यों अपना लिया। आज देखा जाए तो इंसानों की अक्सरियत का यही हाल नहीं है, दुनिया के छोटे छोटे गमों में रोते हैं, हालांकि ये दिल तो बहुत बड़े गम के लिए आया था। आखिरत में क्या होगा, मेरे साथ वहाँ क्या मामला होने वाला है, ऐसा शख्स फिर इंतजार के लिए खड़ा हो जाता है। फिर ऐसा शख्स अपने आप को पाक करता है, दिल को, बाहर को, जाहिर को, और ऐसा शख्स बदले की उम्मीद के बगैर नेकी करता है। आप दुनिया में देखें किसी को ये बात समझ तो नहीं वैसे आती। आप लोग जिस वक्त आके बैठे अल्लाह का कलाम सुन रहे हैं, आप जरा अकल से पूछें तो ये कोई अकल का फैसला तो नहीं है। अकल तो ये चाहती थी कि इस वक्त नरम बिस्तर हो और घर के आराम में आप सो रहे हो, लेकिन ये आपकी अकल का नहीं, ये आपके दिल का फैसला है। इसीलिए अल्लाह ताला ने वही के लिए दिल को मुंतखब किया था। जो चीज़ बंदे के दिल में आ जाती है ना, फिर अकल भी उसके आगे मात खा जाती है। लोगों की अकल को मुसख़र करने की बजाय उनके दिलों को मुसख़र कीजिए। एक दफ़ा आपने किसी के दिल में एक बात डाल दी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला खुद ब खुद फिर उसकी अकल को भी उसकी तरफ झुका देगा। कल्ला वल कमर वल लैली इज अदबर व सुबह इजा असफर इन्नहा ल इहदल कुबर। सच कहता हूँ कसम है चांद की और रात की जब वो पीछे हटे और सुबह की जब के रोशन हो जाए कि यकीनन वो जहन्नुम बड़ी चीजों में से एक चीज है, बनी आदम को डराने वाली, यानी उसे जो तुम में से आगे बढ़ना चाहे या पीछे हटना चाहे। कुल्लु नफ्सिम बिमा कसबत रहीना, हर शख्स अपने आमाल के बदले गिरवी है, इल्ला असहाबल यमीन मगर दाएं हाथ वाले। अल्लाह हमें इनमें कर दे। फी जन्नाती यतसाअलून, कि वो बहिश्तों में बैठे हुए गुनाहगारों से सवाल करते होंगे। क्या सवाल होगा? मा सलककुम फी सकर, तुम्हें दोजख में किस चीज ने डाला? ऐसे नहीं लग रहा जैसे दुख सुख हो रहा है। जेल में बैठे हुए कैदी जो होते हैं ना, वो पूछते हैं तुम्हारा क्या जुर्म था, तो ये जहन्नुम के कैदी पूछेंगे मा सलककुम फी सकर। पहली बात, कालो लम नकु मिनल मुसल्लीन, वो जवाब देंगे हम नमाजी न थे। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, न मिस्कीनों को खाना खिलाते थे। पहले अमल का ताल्लुक अल्लाह की ज़ात से है और दूसरे का इंसानों से, हकुकुल्ला और हकुकुल इबाद। तीसरा गुना, वकुन्ना नहूदु माल खाइतीन, और हम बहस करने वालों का साथ देकर बहस और मुबाहसे में मशगूल रहा करते थे। बाज़ लोगों को बस इतना ही दीन नसीब होता है कि दीन के बारे में बहसें करते रहें। वकुन्ना नुकज्जिबु बियौमिद्दीन, और हम रोज़े जज़ा को झुटलाते थे, हत्ता अतानल यकीन, यहाँ तक कि हमें मौत आ गई। ये थी आयत नंबर 32 से 47, 32 से 47। इसका उन्वान लिखेंगे, तुम्हें क्या चीज़ जहन्नुम में ले आई। आज भी आप देखिए कि ये वो चीज़ें हैं कि जो बहुत सारे लोगों में आपको दिख सकती हैं। अमूमन लोग नमाजों से गाफिल रहते हैं, और अमूमन लोग लोगों को खाना खिलाना या गरीबों को खिलाना इसको पसंद नहीं करते। हाँपने जैसों को खिलाना बहुत पसंद होता है, उनको खिलाते हैं जिनका पेट पहले ही भरा होता है, और उनके बारे में कभी सोचते भी कम है कि जो शायद भूखे सोते होंगे। और ये बहसें करने का जो कल्चर है ना, ये अमूमन इन लीड्स का होता है, मेंटली जो बहुत ज़रा आगे जा चुके होते हैं। अल्लाह ताला हमें दीन के बारे में बहसें करने से महफूज रखे। फरमाया, फमा तनफअहुम शफातुश शाफईन, बस इन्हें सिफारिश करने वालों की सिफारिश नफा न देगी। इन्हें क्या हो गया कि नसीहत से मुंह मोड़ रहे हैं, गोया के वो बिदके हुए गधे हैं जो शेर से भाग रहे हों। बल्कि इनमें से हर शख्स चाहता है कि इसे खुली हुई किताबें दी जाए, हरगिज ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि ये कियामत से बेखौफ है। सच्ची बात तो ये है कि ये कुरान एक नसीहत है। फमन शा अज़करा, अब जो चाहे इससे नसीहत हासिल करे, और वो इस वक्त नसीहत हासिल करेंगे जब अल्लाह ताला चाहे। ये उसी लायक है कि इससे डरें और इस लायक भी कि वो बख्शे। ये थी आयत नंबर 48 से 56, 48 से 56, 56। इनका उन्वान है नसीहत से बिदकने वाले। हाईलाइट करना चाहें तो आप आयत नंबर 50 को कर सकते हैं। इतनी हल्की मिसाल लगती है ना कि इसका तर्जमा पढ़ते हुए भी दिल को कुछ होता है। कान्नहुम हुमरुम मुस्तनफिरा, गोया कि ये गधे हैं बिदके हुए जो शेर से भागते हो। ये कौन है नसीहत की बात को ना सुनने वाले? वो तो अपने आप को पता नहीं कितना अकलमंद कहेंगे। अल्लाह ताला कहते हैं जैसे गधा शेर से भागता है ना, इस तरह ये लोग नसीहत से भागते हैं। नसीहत से भागने से नतीजा क्या निकलता है कि इंसान के अंदर जज्ब की कैफियत कम हो जाती है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें नसीहत को सुन के मानने वाला बना दे, ना कि नसीहत को सुन के हम उससे भिदकने वाले बन जाएं। किसी इंसान के ईमान का, तकवा का एक मेयार ये भी होता है कि नसीहत को सुन के उसके दिल में क्या ख्याल आता है।